ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद और 32वां अध्याय और श्लोक संख्या 22। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुण आश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि हे माता, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकोगी। कृपया मेरी पीछ दोहराएं। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकोगी। तात्पर्य, परमेष्टनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्टि का अर्थ है परम पुरुष। जिस तरह ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष हैं, उसी तरह वैकुंठ में श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं, क्योंकि यही श्रेयकर है। यहां ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की सलाह नहीं दी गई है। मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावेन का तात्पर्य है सर्व प्रेमानुभूति में। ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पहले ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव है। भगवत गीता का वचन है बुद्धा भाव समन्विता। जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पूजनीय स्वीकार कर सकता है। जहां पर भगवान कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है इस श्लोक में तदगुण आश्रया भक्त्या पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि कृष्ण की भक्ति संपन्न करना दिव्य कर्म है। यदि कोई भौतिक कर्म नहीं, यह कोई भौतिक कर्म नहीं, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ब्रह्म भुआय कल्पते, जो भक्ति में लगे हुए हैं वे तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान कपिल ने यहां पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया। अतः भक्ति समस्त गुणों के प्रभावों से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्ति संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु यह कभी सगुण नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता। तद आश्रया, तद गुण आश्रया का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के दिव्य गुण इतने महान हैं कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार प्रशंसनीय होता है, उन्हें किसी दूसरे की पूजा की और मन बढ़ाना नहीं चाहता, नहीं चाहिए। कहा जाता है कि पूतना नामक असुरी आसुरनी कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके स्तनों का पान करके अपनी माता के समान पद प्रदान किया। अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई पूतना इतना उच्च पद प्राप्त कर सकती है तो फिर कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरे आध्यात्मिक विकास के लिए। कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से दोनों प्रकार की संपन्नता भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राप्त हो जाती है, तो फिर कोई अन्य देवताओं के पास क्यों जाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय चल रहा है 32वां, इसमें श्लोक संख्या 16 से लेकर के और 21 तक इसमें कर्म बंधन के बारे में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने ही कर्मों में फंस जाता है और बंधन का उसका कारण बन जाता है। जैसे मकड़ी एक जाला बनाती है, लेकिन वो जाला अपनी शिकार पकड़ने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने आप को सुखी रखने के लिए वो ऐसा घर बनाती है, लेकिन एक दिन उसका जो रास्ता होता है, जिस प्रकार से वो बनाती है, वो भूल जाती है और उस जाले में जो अन्य जीव जो उसके शिकार हैं, जो फंसते हैं, ठीक उसी तरह से वो भी उसमें फंस जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने कर्म करके कर्म बंधन में जकड़ जाता है और ये कर्म ही मोक्ष का कारण भी है, बंधन का भी है और मोक्ष का भी है। जो व्यक्ति इन कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देता है, भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवत भक्ति करता है, वो मोक्ष का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर आज जो श्लोक है 22वां, इसमें कपिल देव बता रहे हैं कि हे माँ, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। क्या सलाह दे रहे हैं? वो कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करो, क्यों कि उनके जो चरण कमल हैं वो पूजनीय हैं, आप उनकी शरण में जाओ। परमेष्टिनम, बड़ा अच्छा शब्द यहां दिया है परमेष्टिनम। वैसे परमेष्टि जो शब्द है इसका अर्थ होता है परम पुरुष, या जो परमेष्टि शब्द है तस्मा तुम सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनम। किसका भजन करना है? भगवान श्री कृष्ण का, उनके चरण कमलों का, जो परम पुरुष हैं, परमेष्टिनम, जो परम पुरुष हैं। तो परम पुरुष जो कई लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, विशेष करके जो संसारी लोग होते हैं, जिन पर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती, जो कृष्ण के भक्त नहीं होते, वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे परमेष्टि, परम पुरुष, तो परम पुरुष ब्रह्मा को भी बोलते हैं, शिव को भी बोलते हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव को भगवान के तुल्य समझता है तो ये अपराध होता है, या उनसे स्वतंत्र समझता है, अर्थात ना तो वो भगवान के तुल्य हैं और ना भगवान से स्वतंत्र हैं। तो यहां जो कपिल देव जी कह रहे हैं, परमेष्टि शब्द जो बोले हैं, केवल और केवल भगवान कृष्ण के लिए कहे हैं। क्यों? कि गोलोक धाम के जो परम पुरुष हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए भजस्व परमेष्टिनम, परम पुरुष का ध्यान करो, भजन करो और आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से उनको स्वीकार करो विद लव एंड डिवोशनल, प्यार और श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकोगी। अगर आप प्रेम से भगवान का चिंतन करोगे, कृष्ण का मनन करोगे, उनका ध्यान करोगे, उनके चरण कमलों का ध्यान करोगे, तो आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकोगे। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कपिल देव। और किसके लिए बोल रहे हैं? माँ देवती के लिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि पुत्र प्रवक्ता हैं और श्रोता कौन है? माँ है, जो उनकी जननी है। हालांकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उनकी लीला दिव्य है, वो खुद ही दिव्य हैं, तो दिव्य की लीला तो दिव्य होगी। तो वो पुत्र के रूप में आए और अपनी माँ देहूती को माध्यम बना करके वो हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं। केवल माँ को नहीं दे रहे हैं, उनको माध्यम बनाया, अर्जुन को माध्यम बनाया भगवत गीता के लिए, जिससे भगवत गीता का श्रवण हम लोगों को मिल सके। तो भगवान माध्यम बनाते हैं, किस प्रकार से लीला करते हैं, उनकी लीला दिव्य है। उनके जन्म, उनके कर्म, ये सब दिव्य है। जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन नेति मामेति स्वर्जन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि कपिल देव जी पुत्र हैं, मां को उपदेश दे रहे हैं, तो उनके जन्म दिव्य हैं, कर्म भी दिव्य हैं, और दिव्य की तो हर चीज दिव्य ही होगी। तो यहां परमेष्टि शब्द को कई लोग ब्रह्मा के लिए प्रयोग में लाते हैं, कई लोग शिव के लिए प्रयोग में लाते हैं, लेकिन भगवान कपिल देव जी का इस प्रकार से कहना नहीं है। भगवान कपिल देव क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का, उनके चरण कमलों का ध्यान करो, जिससे आपको क्या होगा? दिव्य भक्ति आपको प्राप्त होगी। देखिए, नारायण उपनिषद है जिसमें लिखा गया है नारायणा नारायणाद ब्रह्मा जायते और नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते। नारायण से कौन कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र और नारायण अष्टो बसवो जायते जयंते, और आठ जो बसु हैं वो भी नारायण से उत्पन्न होते हैं। और नारायण नारायणाद एकादश रुद्रा जायंते, जो ग्यारह रुद्र हैं वो भी भगवान नारायण से ही उत्पन्न होते हैं। और नारायणाद द्वादश आदित्या, और नारायण से ही जो बारह आदित्य हैं वो भी नारायण से उत्पन्न होते हैं। और नारायण भगवान कृष्ण का अंश है, वो भगवान कृष्ण से। अब देखिए, तो फिर रह क्या गया? तो यहां कपिल देव जी जो बोल रहे हैं, ये परमेष्टि जो शब्द बोला है उन्होंने, केवल कृष्ण के लिए बोला है, कृष्ण परम पुरुष के लिए बोला है। और यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। मोक्ष धर्म में भी कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यमेव सृजामि वही। वो कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को तथा अन्यों को उत्पन्न किया है। ये भगवान कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में, क्या कह रहे हैं? जैसा कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है, बुद्धा भाव समन्विता, 10 का 8वां श्लोक है, कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मते सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कोई भी चीज बुरी या अच्छी, कोई भी वस्तु, कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो मुझसे उद्भूत नहीं है। अर्थात हर चीज का एक कारण होता है, हर वस्तु का कारण है। हम लोग यहां आए उसका कारण है, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसका भी कारण होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है, इसके कारण हम ये कार्य कर रहे हैं। प्रसाद खाया, भूख लगी, उसका कारण है भूख लगी है, प्रसाद ले रहे हैं। तो कई कारण होते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। बिना कारण कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता बिना कारण के। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने संसार में कारण हैं उन सब का कारण मैं हूं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे परे हो, सभी कारणों का कारण हूं। और ये भौतिक अहम सर्वस्व क्लियर बोल रहे हैं कि मैं जो है सभी कारणों का कारण हूं। मत चित्ता मतगत प्राणा, और जो व्यक्ति मत चित्ता मतगत प्राणा बोध्यंत परम, जो व्यक्ति मेरे बारे में चर्चा करता है, मेरा ज्ञान एक दूसरे को देते हैं लेते हैं, मत चित्ता मतगत प्राणा बोध्यंत परस्परम कथयंत से माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, वो मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं, उनको मेरा प्रेम अर्थात मैं उनको अपना प्रेम प्रदान करता हूं, ऐसे ही बोल सकते हैं। तेषां एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम है नास्यामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। वो कहते हैं कि मैं जो व्यक्ति प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है उस व्यक्ति के लिए मैं क्या करता हूं, हृदय में बैठ के और ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूं, ज्ञान दीपेन भास्वता, जो माया रूपी अंधकार को दूर कर देता है ऐसा दीपक। तेषां सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति सतत रूप से लगातार तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक विद लव एंड डिवोशन भाव और श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी कथा श्रवण करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, वो क्या क्या करता हूं मैं उसको, ददामि बुद्धि योगम तम, उस व्यक्ति के लिए उस जीव के लिए मैं योग बुद्धि प्रदान करता हूं। योग बुद्धि प्रदान करते हैं, बोले हां। इससे क्या होता है, बोले वो इस दुनिया में रह करके कोई भी ऐसा गलती नहीं करता जिसके कारण वो अपने बंधन में पड़ जाए, अर्थात मैं उसको क्या करता हूं ऐसी योग बुद्धि प्रदान करता हूं, अर्थात उसका इतना ख्याल रखता हूं मैं कि उसको अपने मार्ग से इधर उधर नहीं जाने देता। किससे, जो सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है सतत रूप से, उसको मैं ऐसी ददामी बुद्धि योगम तुम, ऐसी योग बुद्धि प्रदान करता हूं, कैसी कि ये नाम पयांतते, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति फिर मेरे धाम को वापस आ जाता है। और यही मैं चाहता हूं हर जीव से, यही मैं आशा करता हूं कि वो मेरा है और मेरे पास आए और मुझसे मिले, वो मुझसे बिछुड़ गया है और मैं उससे मिलना चाहता हूं, इसका इंतजार कर रहे हैं भगवान कि जीव कब मेरे पास आएगा, कितने दिन हो गए उसको, अभी पता नहीं कब तक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं तुरंत अपने धाम में ले लेता हूं, अर्थात मुझे भी उस समय आनंद आता है जब मेरा भक्त मुझसे आकर के मिलता है, मेरा आलिंगन करता है, मैं उसका आलिंगन करता हूं। जैसे सुदामा जी को भगवान नंगे पैर दौड़े, जैसे ही सुना उन्होंने कि द्वारे पे एक सुदामा नामक कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ है और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही दरबार ड्योरी वालों ने बताया कि सुदामा जी दरवाजे पे खड़े हैं, भगवान ने सुना तुरंत दौड़ पड़े और उस समय आनंद को भी आनंद आया, आलिंगन जब किया तो उनको भी आनंद आया, अर्थात वो चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आए, मेरा अंश है। तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के लिए क्या करता हूं, ददामि बुद्धि योगंतम, जो मेरे बारे में हमेशा सुनता है, कथयंत से माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, जो दिव्य आनंद की अनुभूति जो करता है, है जो कथा करता है, सुनता है, हमेशा मेरे में बिजी रहता है, एंगेज रहता है, मेरी पूजा करता है, उस व्यक्ति के लिए मैं योग बुद्धि प्रदान करता हूं। और कैसी योग बुद्धि, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेता है, ये नाम पयांते। वो कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश मान दीपक के द्वारा अज्ञान जमतम है, अज्ञान अंधकार को दूर कर देता हूं। देखिए सूर्य और अंधकार इन दोनों का बैर है, एक दूसरे के पास नहीं रखते। सूर्य और अंधकार कभी मित्र नहीं हो सकते। ऐसे ही माया और कृष्ण, अर्थात माया रूपी अंधकार है, जैसे कृष्ण रूपी प्रकाश अंदर आएगा तो माया रूपी अंधकार अपने आप चला जाएगा। जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। कृष्ण है सूर्य सम, सूर्य के समान है कृष्ण, और माया है अंधकार, अंधकार के समान है माया। तो यहां जो बता रहे हैं कि हे मां आप प्रेमा भक्ति करो, और इस प्रकार से अगर आप भक्ति करेंगे, स्वीकार करेंगे उनके चरण कमलों को, तो क्या होगा, तुमको दिव्य भक्ति प्राप्त होगी। ये मां के लिए उपदेश देके जा रहे हैं। कौन दे रहे हैं, कपिल देव जी। और ये प्रेम जो भक्ति है, इस ईश्वर का जो शुद्ध प्रेम है, इस प्रेम को प्राप्त करने से पहले जो ऊपर उठने का जो साधन है वो क्या है, इस शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने से पहले जो ऊपर उठना है उसको, शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो क्या है, उसका क्या साधन है, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो है भाव, भाव और श्रद्धा के साथ। भगवान बल दे रहे हैं बात को कि भाव और श्रद्धा के साथ। और भाव कहां से आता है, अब भाव को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भाव चाहिए, भाव ग्राही जनार्दन है। भगवान कृष्ण भाव के भूखे हैं, ज्ञान के और तुम्हारे अनुशासन के इतना भूखे नहीं जितना भाव के भूखे हैं। भगवान कृष्ण को भाव चाहिए, और भाव कहां से मिलेगा, कहां है भाव, ये भी भगवान बता रहे हैं। दसवें में पांचवा श्लोक बता रहे हैं, गीता जी का दसवां अध्याय पांचवा श्लोक क्या बता रहे हैं भगवान, भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा, कि जो अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग जो भाव होते हैं, अलग अलग जो परिस्थितियां हैं, वो सब मुझसे ही जीव में आती हैं। भूतानाम सभी जीवों में वो मेरे द्वारा ही आती हैं, अर्थात मैं ही प्रदान करता हूं। अब मैं प्रदान कैसे करूंगा, जब व्यक्ति कथयंत से माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च तेसम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो व्यक्ति सतत रूप से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है उस व्यक्ति के लिए मैं भाव देता हूं, उस जीव के लिए मैं भाव देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवों में जो भाव है भिन्न भिन्न रूप में मुझसे ही तो आता है। कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति करना चाहता है उनमें सारे गुण ये उत्पन्न हो जाते हैं। जो कृष्ण भावना भावत को ग्रहण कर लेता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। प्रभुपाद जी ने सोसाइटी का नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, कितना सुंदर नाम दिया। क्यों दिया, अब थोड़ा विचार करके देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मृत संघ, अर्थात प्रभुपाद जी को उद्देश्य क्या रहा था कि सभी लोग पूरे संसार में, अंतर्राष्ट्रीय सब पूरे संसार में सभी लोग कृष्ण भावना भावित तो हों, ऐसा उद्देश्य लेकर के प्रभुपाद जी ने संघ की स्थापना की कि सभी लोग कृष्ण भावना भावित तो हों। और कृष्ण भावना भावित कौन होंगे जो उसमें प्रगति करना चाहेंगे, तो कृष्ण उनके लिए भाव प्रदान करेगा, और जब भाव प्रदान करेगा तो भगवान क्या है, भावग्राही। भगवान क्या है, भावग्राही। भाव किसको देंगे, जो कृष्ण भावना भावित होना चाहेगा, उसमें प्रगति करना चाहेगा, उसके लिए भाव देंगे। देखिए एक बार बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कि मीरा जी कुछ संतों के साथ कीर्तन कर रही थी, अब बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था, सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, मीरा जी नाच रही थी, सभी संत सभी वैष्णव नाच रहे थे, और एक धुन में कीर्तन चल रहा था। किसी को यह पता नहीं था कि मेरे साथ में कौन डांस कर रहा है, या मीरा जी किसके साथ में खड़ी हुई है, या मीरा जी डांस कहां कर रही है, या एक दूसरे को नहीं पता कि मैं कहां डांस कर रहा हूं, और नाच रहे हैं, गा रहे हैं जोर जोर से। तो वहां पर एक जो राग के जानने वाले थे वो आ गए। अब भक्त लोग तो राग को कोई वैल्यू नहीं देते, क्या है उनको तो कीर्तन करना है, उनको आनंद आना है, कैसे भी आनंद आना चाहिए, बस उल्टा सीधा। लेकिन भगवान का नाम तो दिव्य है, मिश्री है, अंधेरे में खाएंगे तो क्या फीकी लगेगी, मीठी लगेगी, उसका गुण है वो। अंधेरे में खाओ, प्रकाश में खाओ, चार लोगों के सामने खाओ, अकेले खाओ, तो भगवान का नाम है ये। लेकिन वह एक ऐसे जो राग के जानने वाले थे वो पहुंचे, उन्होंने देखा अरे कितना सुंदर कीर्तन है ये, कितना बढ़िया महामंत्र, और इस महामंत्र को देखो राग में नहीं गा रहे ये लोग, अरे धिक्कार है, बताइए कितना सुंदर इन लोगों के गले हैं, कितना सुंदर इनका भाव भी है, सब कुछ है, लेकिन राग में नहीं गा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, हाथ करके रोकने लगे सब, अरे रुको भाई रुको, अरे क्या कर रहे हो आप, थोड़ा रुको मेरी सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। कोई सुनने वाला था, उनको पता ही नहीं कि कोई हमसे क्या बोल रहा है, वो तो इतने मग्न है कीर्तन में, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये लोग ऐसे सुनेंगे नहीं, उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा राग में गाओ राग में गाओ, दोनों तरफ लिख करके और हाथ में ले लिया, और चलने लगे भीड़ में कि किसी की नजर तो पड़ेगा। तो जब चलते चलते पहुंचे मीरा जी के पास, तो मीरा जी ने देखा हाँ कोई राग के जानने वाले राग के मर्मज्ञ यहां पर पधारे हैं। तो उन्होंने धीरे से उसको लिया और चौक ले करके उसमें कुछ नहीं किया, उसको मिटाया नहीं, उसको डांट भी नहीं मारा, कुछ भी नहीं बोला उससे, केवल उसको नीचे लिया। उन्होंने सोचा शायद इन्होंने मेरी बात सुना है और अब मेरी बात का यहां पर कुछ वैल्यू करेंगे, सुनेंगे। लिया और उसमें लिख दिया अनु, दोनों तरफ लिख दिया अनु, राग तो है ही राग में गाओ, उसमें लिख दिया अनुराग में गाओ। हमको कुछ भी मिटाना नहीं है, हमको जोड़ना है, और क्या जोड़ दिया, अनुराग। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, अनुराग, राग की जरूरत नहीं है। तो अनुराग में गाओ, और ये अनुराग कब होगा, जब हम कृष्ण भावना भावित तो होंगे। जब तक कृष्ण भावना अमृत हमारे अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक हम अनुराग में नहीं जी पाएंगे, जब तक अंदर भाव नहीं आएगा। क्यों, कि भाव तो कृष्ण से ही आता है। तो यहां परम पुरुष जो परमेष्टिनम जो शब्द आया है, ये केवल भगवान और केवल कृष्ण के लिए ही कपिल देव जी ने कहा है। और वो कह रहे हैं, एक दूसरा शब्द आया यहां सर्वभावेन, देखा होगा सर्वभावेन का अर्थ होता है सर्व प्रेमानुभूति, जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो कहते हैं हे मां, भगवान कपिलदेव ने अपनी माता को यही उपदेश दिया कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, उनकी पूजा करो, उनको प्रेम से स्वीकार करो, और ऐसा करने से आपकी जो भक्ति है वो दिव्य हो जाएगी, दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकोगी। तद गुण आश्रया भक्ता पद भी यहां महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है कृष्ण की भक्ति संपन्न करना एक दिव्य कर्म है और कोई भौतिक कर्म नहीं है। तो इस प्रकार से गीता में भी कहा है ब्रह्म भुआय कल्पते, जो व्यक्ति जो भक्ति में लगे हुए हैं वो तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत संघ इसीलिए प्रभुपाद जी ने बनाया कि लोग भक्ति में लगे रहें, और लगे रहेंगे तो क्या होगा, दिव्य धाम। कौन है दिव्य धाम? गोलोक धाम भगवान का, उस दिव्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। तदगुण आश्रया, यहां जो शब्द आया तदगुण आश्रया भक्त्या भजनीय पदाम भुजम, कहते हैं भगवान कि कृष्ण के दिव्य गुण इतने महान हैं कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो इतने दिव्य हैं कि फिर मनुष्य को, विशेष करके जीवात्मा को, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर वो वास्तव में प्रेम और श्रद्धा के साथ उनको समझता है, उनको भजता है। देखिए एक बार जमुना जी का किनारा था और भगवान कृष्ण कदम के नीचे खड़े होकर के बंसी बजा रहे थे, बंसी वादन कर रहे थे। और जब बंसी बजा रहे थे तो अचानक एक सखी वहां पहुंची। सखी ने देखा कि भगवान कृष्ण टेढ़ी चितवन से, अर्थात दो तीन जगह से टेढ़े होकर के अर्धनिद्रा की मुद्रा में, आधी आंखें खुली हैं आधी बंद हैं, और बंसी बजा रहे हैं। अब देखा होगा बंसी जब बजाते हैं तो प्राय करके पलक थोड़ा नीचे हो जाते हैं, और भगवान मग्न होकर के बहुत सुंदर राग में गा रहे हैं, उस बंसी को बजा रहे हैं, अलाप रहे हैं। तो सखी ने देखा, वो पनघट पे गई पानी भरने के लिए, तो देखा तो घूर घूर के देखने लगी, अरे ये तो प्यारे श्याम सुंदर हैं, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। देखा हाँ नहीं नहीं वो ही है, और ऊपर नीचे घूर घूर के आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। और उधर से पानी भर के लाई, फिर भी देख रही है। 20वीं बार देखा, 50वीं बार देखा, इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न मुद्रा में वहां से चलने लगी, आ रही है रास्ता में। उसको होश नहीं कि मेरा पैर जमीन पर कहां गिर रहा है, कोई कंकड़ भी है, पत्थर भी है, कांटा भी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इतना प्रसन्न चित्त है, कई बार देखा होगा हम लोगों का भी, कई बार मन बड़ा प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे पे वो प्रसन्नता झलक जाती है। इधर से श्यामाजू जा रही है, तो जब राधा रानी इधर से जा रही है, उधर से सखी आ रही है, तो सखी की जो मुद्रा देख करके राधा रानी को आश्चर्य हुआ। वो कहने लगी, हे सखी क्या बात है, तो बहुत कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हो आप, क्या कोई विशेष बात है क्या? बोले एकदम ध्यान टूटा राधा रानी जब टोका, नहीं 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 श्यामा जी ऐसे ऐसी कुछ बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात तो है, आप तो कहीं खोई खोई सी नजर पड़ रही हैं, आप तो यहां है ही नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए सखी लड़खड़ाती हुई बोली, श्यामा जी क्या बताऊं, आज तो कमाल हो गया। न क्या हुआ कि आज मैंने प्यारे श्याम सुंदर को पूरी नजर भर के देखा है। ओहो क्या सुंदरता है, क्या उनकी मुस्कान, कि अर्धनिद्रा में कितने सुंदर लग रहे हैं बंसी बजाते हुए हैं, एक पैर को टेढ़ा कर रखा है, पूरा कमर झुकी हुई है, गर्दन टेढ़ी हो रही है, उसका वो बखान कर रहे हैं। बोला अच्छा सखी, बोला आश्चर्य तो इस बात का है कि मैंने नक्शे लेके चोटी तक कितने बार देखा मुझे मालूम नहीं। बोला अच्छा, बोला तो श्यामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर के, और प्रसन्न भी हुई। बोले सखी इस जगत की सबसे ज्यादा भाग्यशाली सखी है। आज मुझे मालूम पड़ा कि इस दुनिया में अगर भाग्यशाली सखी है तो वो तू है। तो ये बात कहा बहुत भाव और श्रद्धा के साथ राधा रानी ने, लेकिन सखी उसको अदर वे में ले गई। बोले श्यामा जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन श्यामा जी आप तो उनको रात दिन देखते हैं, मैं ऐसी भाग्यशाली कैसे हो गई? नहीं, आपने नक्शे लेके चोटी तक बार बार उनको देखा है और इतना मौका आपको मिल गया कि राधा श्याम सुंदर आपको देख नहीं पाए और आप उनको देखते रहे। बोले हाँ ये तो है, मुझे उन्होंने नहीं देखा, तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन श्यामा जी आप तो हमेशा उनके साथ रहती हैं, मैं ऐसे भाग्यशाली कैसे हो सकती हूं? मैं तो आज पहली बार देखा है, लेकिन आप तो हमेशा उनके औलाद नहीं सकती हैं। कृष्ण राधा के बिना आधा है, तो आप दुनिया की सखी ऐसे मेरी ऐसी क्यों मेरा बखान कर रहे हैं? तो क्या बोली राधा रानी, सखी अगर सत्य पूछी जाए ना तो एक बात बता दूं। बोला बताना ही पड़ेगा, मेरे तो मन में बहुत ज्यादा खलबली हो गई। बोले सखी मैंने आज तक श्याम सुंदर को नक्शे लेके चोटी तक एक बार में नहीं देखा न। कारण यह है कि अगर नख पे मेरी नजर चले गई तो वहीं कांस्टेंट हो जाती है, ऊपर बढ़ती नहीं। उसमें इतनी सुंदरता है कि उसको देखते देखते वहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें झुलझुली हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता आगे कुछ भी, और समय निकल जाता है। लेकिन धन्य तुम्हारी नजरों के लिए जो नजरें बार बार ऊपर नीचे देखती रहे। तो यह है भाव किसका, राधा रानी का। तो इस प्रकार से जो भाव है, और ऐसे इस प्रकार के गुण हैं भगवान कृष्ण में कि उन गुणों को देख रहे हैं, सुंदरता को देख रही है राधा रानी, लेकिन ऊपर नीचे नजर नहीं जा रही है। इतनी सुंदरता है कि वो नजर जो चाहती है उसको देखना, वो तृप्त नहीं हो रही है, उसकी तृप्ति नहीं हो रही है उस सुंदरता को देख करके। क्यों? कि भगवान कृष्ण क्या है, सर्व संपन्न है, सुंदर हैं, करुणा निधि हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, सर्व आकर्षक हैं, हर व्यक्ति को आकर्षण करते हैं भगवान कृष्ण। उनका नाम इसीलिए तो कृष्ण है वो, और आपने देखा होगा कितनी दया है उनके अंदर, प्रभुपाद जी यहां कोट कर रहे हैं, कितना दिव्य गुण है उनके अंदर। क्या कि पूतना कूट हलाल जहर स्तन में लगा के आई थी और यह निश्चय करके आई कि आज मैं कृष्ण को मार दूंगी जहर पिला के, और वहीं से चिंतन करती आ रही है, वहां सो रहा होगा, वहां बैठा होगा, मैं ऐसे जाऊंगी, पता नहीं इधर मुंह कर रखा होगा, और इस समय तो सो नहीं रहा होगा, खेल रहा होगा। यानी उनकी लीलाओं का उनके बारे में चिंतन करते करते ही आ रही है। इधर भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले अच्छा वक्त तो यही है मेरा, मेरी मां भी नहीं सोच रही होगी कि मैं अभी पैर लंबे कर रहा हूं कि नीचे कर रहा हूं कि मैं रो रहा हूं कि हंस रहा हूं, वो तो अपने कामों में लगी हुई है, लेकिन वारी मेरी मां क्या मेरा चिंतन करती हुई आ रही है कि मैं सो रहा हूंगा या मैं हंस रहा हूंगा या मैं कैसा हूंगा या मैंने कैसे कपड़े पहन रखे होंगे या मेरा जो झूला है वो किस प्रकार से होगा या मैं कहां पे बैठा हूंगा कहां सो रहा हूंगा, कितना चिंतन करती आ रही है। सुंदर भी तो होगा वो, ऐसा बात नहीं है, और स्तनपान तो वो करेगा, अगर भूखा होगा तो बहुत जल्दी करेगा। अब पता नहीं उसको दूध पिलाया कि नहीं पिलाया मां ने, अभी टाइम तो नहीं हुआ है दूध पिलाने का। तो अपने मन में उसके में ये भाव आ रहे हैं, किसके में, पूतना के में, और उद्देश्य क्या है उसका, केवल मारना, और ऐसा जहर लगा के गई कि तुरंत पिए ऑन द स्पॉट खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या दिया उसको, मां की गति। तो ऐसे वो दयालु हैं, ऐसे ही दयालु तभी तो उसका नाम कृष्ण है। और कृष्ण ने एक नाम देखा होगा आपने, जब भी महाभारत में नाम प्रयोग आया है तो कृष्ण ने द्रौपदी को भी कृष्णा बोला है, हे कृष्णा। क्यों? अपना नाम दिया। द्रौपदी के साथ साथ कृष्णा नाम बहुत कई बार उसमें आया है, भगवान कृष्ण कई बार बोलते थे हे कृष्णा। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा है, उसमें भी कृष्ण जैसी दयालुता है, जो पांच पुत्रों का वध करने वाला अश्वस्थामा और उसको क्षणभर में माफ कर दिया। अरे क्यों? क्योंकि इसका जो मरने का जो कष्ट उस मां को होगा वो मैं जान सकती हूं, क्योंकि मैं आज बिना पुत्र की हो गई, पांच पुत्रों को खो करके मैं आज बिना पुत्र की हुई हूं, और इसकी मां इसको खो करके, एक को खो करके बिना पुत्र की हो जाएगी, और वो जो वेदना मुझे जो हो रही है वो वेदना उसको होगी। नहीं, आप छोड़ दीजिए। और छोड़ दिया तो क्यों? कि द्रौपदी में भी वही गुण थे जो कृष्ण में है, इसलिए उसको नाम क्या दिया उन्होंने? कृष्णा। वो भी दया की सागर थी, दया निधि थी वो। और यही संस्कार उसके अंदर तो थे, क्योंकि वो हमेशा भगवान के ऊपर ही डिपेंड थी। चिरहरण हुआ तो भगवान को पुकारा, क्या मेरा कोई नहीं है, आप आइए, मैं आपकी शरण में हूं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने और हाथ ऊपर कर दिया। और भगवान आए, 10,000 गज बल घटो, घटो ना 10 गज चीर, 10 गज की धोती कम नहीं हुई, 10,000 हाथियों का बल कम हो गया, दुशासन खींच खींच आ रही। तो कहने का तात्पर्य वही गुण उन्होंने उत्तरा में दिए, अपनी पुत्र वधु में वही गुण दिए। जब भगवान द्वारका जाने लगे तो अश्वत्थामा तो माफ कर दिया, लेकिन दुष्ट तब फिर की कर दिया दोबारा उसने, और वो ब्रह्मस्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ। उत्तरा को वेदना हुई, दौड़ के आई, वहां पांचों पांडव खड़े हैं, भगवान रथ पे आरूढ़ हो चुके हैं, द्रौपदी खड़ी है, लेकिन किसी से नहीं कहा मां मेरी रक्षा करो, पिताजी मेरी रक्षा करो, अर्जुन धनुर्धारी गांडीवधारी खड़े हुए, लेकिन किसी की शरण में नहीं गई। क्या कहा? हे कृष्ण, दौड़ती हुई आई, मेरी रक्षा करो। क्यों? कि कृष्ण ही रक्षा करने में सामर्थ्यवान है और कोई सामर्थ्यवान नहीं है। तो हे मां, आपको कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, उनके चरण कमल पूजनीय हैं, वो परम पुरुष हैं, उनकी भक्ति करो जिससे तुमको दिव्य भक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से माता को उपदेश दे रहे हैं कपिल देव जी। और इस प्रकार से आज का जो हम लोग देख रहे हैं भक्ति वेदांत, जो तात्पर्य है वो पूर्ण होता है, और समय भी समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो? वैसे मैं किसी काबिल तो नहीं हूं, दूसरा ये है कि मेरी गलतियों पर ध्यान ना दे करके जो कुछ अच्छाई इसमें आई हो उसे ग्रहण कर ले। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। हरे कृष्णा।